नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देशभर में आतंकवाद निरोधक दस्ते का साझा ढांचा बनाने का आह्वान किया। पुलिस महानिदेशकों को इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत की 3-0 की अजय बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल से शुरू हुए 3 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है।
यह सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। इस सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा क्षेत्र विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस लिपि का सृजन 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए किया था। ये लिपि संथाल आदिवासी समुदाय के लिए सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी पहचान, साहित्य और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति मंगलवार को झारखंड के गुमला में अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस का एक साझा ढांचा बनाने का आह्वान किया है। गृहमंत्री ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के 2 दिन के आतंक रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआईए ने एक साझा आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ढांचा विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। श्री शाह ने भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से सामना करने के लिए देश में एक अभेद्य और मजबूत आतंकवाद रोधी ग्रिड बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री ने कहा कि देश को 2 कदम आगे रहना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में तकनीक के इस्तेमाल के कारण आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए सभी एजेंसियों को देश और दुनिया की प्रत्येक आतंकवादी घटना का विश्लेषण करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि ये वार्षिक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के विजन के तहत उभरते खतरों से निपटने के लिए एक मंच बन गया है। श्री शाह ने कहा कि पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट मामलों की जांच सामान्य पुलिसिंग नहीं, बल्कि पुख्ता जांच के बेहतरीन उदाहरण है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि भारत बांग्लादेश के मयमनसिंह शहर में हाल ही में एक हिंदू युवक की जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करता है।
हाल ही में हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो, और इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा बताकर इस दरकिनार नहीं किया जा सकता।
श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करता है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होने वाले हैं।
जहां तक बांग्लादेश में चुनाव का सवाल है, वहां पर हम लोग चाहते हैं कि वहां स्वतंत्र चुनाव हो, वहां निष्पक्ष चुनाव हो और वहां एक समावेशी चुनाव हो, तो यही हमारा पक्ष है जहां तक चुनाव के मामले की बात है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर जमानत मंजूर करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने के दौरान निलंबित करने का आदेश दिया और उन्हें सशर्त जमानत भी दे दी। सेंगर को उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले में वर्ष 2019 में शेष CBI अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हमारे संवाददाता वर्ष 2025 में कराधान क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं।
भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं।
2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे, उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम GST लाए तो आने के बाद पहले GST में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे।
भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। दूसरी ओर आयकर में छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2025 में 12 लाख रुपए कर दी गई, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। यह कर सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में विश्वास, सरलता और पारदर्शिता लाकर विकास और अनुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईशानी यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और विकसित भारत के निर्माता हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ आयोजित रात्रि भोज में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बच्चों के योगदान की सराहना की। उत्तर रेलवे की जम्मू संभाग ने नई दिल्ली और श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष आरक्षित रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। नववर्ष के अवसर पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। आज से 1 जनवरी तक चलने वाली इन विशेष रेलगाड़ियों में प्रत्येक में 16 डिब्बे होंगे। टिकटें भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और प्राधिकृत टिकट एजेंट के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर में 41 दिवसीय मंडल व्रतम के दौरान सबसे शुभ अनुष्ठान मंडल पूजा आज आयोजित की जाएगी। इस समारोह में देवता को स्वर्ण वस्त्र थंगा अंकी पहनाया जाएगा, जिसके बाद विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, चिकित्सा सेवाओं और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इसराइल सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहता है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक बताया है। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसमें राजदूत की नियुक्ति और दूतावासों का उद्घाटन शामिल होगा। सीरिया के होम्स प्रांत में अलावी मस्जिद में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 से अधिक घायल हो गए। सरकारी समाचार एजेंसी सना के अनुसार यह हमला होम्स के वादी अल दहाब इलाके में स्थित इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने सीरिया हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों और पूजा स्थलों पर हमले अस्वीकार्य हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी वार्ता के लिए वे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कीव में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि ये बैठक रविवार को होगी। बातचीत में अमरीका की मध्यस्थता से तैयार की गई 20 सूत्री शांति योजना के साथ साथ यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 सूत्री योजना 90% पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक समझौते पर भी चर्चा होगी और यूक्रेनी पक्ष क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। खेलों में भारत ने तीसरे महिला क्रिकेट T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से बढ़त बना ली है। कल रात तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए। भारत ने सिर्फ 13 ओवर और 2 गेंद में 115 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त करने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, दो हिंदू युवकों की हत्या पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा, यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी। अमर उजाला के शब्द हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले गंभीर, सियासी हिंसा कहकर नहीं कर सकते खारिज। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों तक चाय दूध पहुंचाने वाले सवर्ण सिंह और सबसे तेज शतक वीर वैभव सूर्यवंशी को अवार्ड। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पहले कभी सपने देखने से भी डरते थे युवा, आज प्रतिभाओं को खोज रहा है देश। कोविड के बाद वायु प्रदूषण है सेहत पर सबसे बड़ा संकट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, उत्तर भारत में प्रदूषण लाखों लोगों के फेफड़ों को पहले ही गंभीर नुकसान पहुंचा चुका है। देशबंधु ने मौसम की खबर प्रकाशित की है, उत्तर भारत में इस बार लंबी चलेगी शीतलहर, जनवरी का महीना सबसे चुनौतीपूर्ण रहेगा। कबूतरों को दाना चुगाने पर देश में पहली बार सजा, मुंबई की अदालत ने दोषी पर लगाया 5,000 रुपए का अर्थदंड, सार्वजनिक स्थान पर दाना खिलाने पर हुआ था गिरफ्तार। दैनिक जागरण ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। किताबों का नहीं उम्मीदों का बोझ, हर कक्षा का दूसरा बच्चा तनाव में, शिक्षकों से चिंता और थकान को लेकर पूछते हैं प्रश्न, राजस्थान पत्रिका की खबर है। हिंदुस्तान ने ब्रिटेन स्थित लिवरपूल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का अध्ययन प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, कुछ विशेष शब्द बताते हैं आपका व्यक्तित्व, 1000 लोगों की पोस्ट का किया गया विश्लेषण, बात करने के तरीके ईमेल या सोशल मीडिया कमेंट से पहचान करना हुआ आसान।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देशभर में आतंकवाद निरोधक दस्ते का साझा ढांचा बनाने का आह्वान किया। पुलिस महानिदेशकों को इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।